ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल 11 वर्षों की यात्रा पर विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए खेल और शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पैरालंपिक में 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी और शिक्षाविद के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार प्रवीण डोगरा।
भारत युवाओं का देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी जो है युवाओं की है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी 11 साल पूरे किए हैं और इस सरकार का भी जो फोकस है वो युवाओं पर है। उनके लिए नीतियां बनाना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेलों के क्षेत्र में हो। और इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ है मोना पारसाथी। तो पिछले 11 सालों में जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसने खेलों को कितना बूस्ट किया है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना स्ट्रॉन्ग किया है, और कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है आपको लगता है कि सही में ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मदद मिली है?
अगर हम खेलों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमेशा से उनका ये फोकस रहा है कि जो सॉफ्ट पावर है खेलों की, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अगर हमें बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमें खेलों पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। और आप 1900 से 2012 तक ओलंपिक देखें, 23 ओलंपिक भारत ने खेले हैं जिसमें 26 पदक मिले हैं और जो 6 पदक है वो आजादी से पहले के हैं। और मेजर चंक आपको पता है कि पदकों का हमें हॉकी में मिला है, 8 बार के हम गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2016 से 2024 तक हम 15 पदक जीत चुके हैं, और उसमें भी अगर पेरिस ओलंपिक को देखें तो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा रहा है। रियो ओलंपिक में हमारे पास 2 पदक आए थे, टोक्यो में 7 और पेरिस में 6 पदक आए हैं। तो इस तरीके से जो प्रदर्शन ग्राफ है वो बड़ा है। अब दूसरी बात आती है कि सरकार ने उसमें क्या योगदान दिया है। तो आप देखिए कि जो पिछले 11 साल में हमारा खेलों का बजट है वो कितने गुना बड़ा है। 2013-14 में 1219 करोड़ रुपया था और अभी 2025-26 में जो इंक्रीज हुआ है वो 3794 करोड़ के करीब है, और उसमें मेजर चंक जो है वो खेलो इंडिया का है।
जब पेरिस ओलंपिक से हमारा कंटिंजेंट वापिस आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी उन खिलाड़ियों से और बताया था कि खेलो इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है पूरे खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बुनियादी सुविधाओं को।
ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्ज्वल रहने वाला है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। साथियों, आज भारत अपने यहाँ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रांड टूर से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव गांव शहर शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की है, और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने हैं।
एक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है जिसके बारे में अब शायद सभी खिलाड़ियों को पता है। इसमें ओलंपिक में पदक के जो दावेदार हमारे खिलाड़ी होते हैं उनका पूरा प्रशिक्षण का, एक्सपोजर का सारा खर्चा, विदेश में ट्रेनिंग का, साइंटिफिक ट्रेनिंग का वो सरकार वहन करती है। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा है, क्योंकि अब जो है खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग पे पूरा फोकस उसका रख सकता है, उसको कागजी कार्रवाई में कहीं नहीं पड़ना है, वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी तरह से 2026 एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप भी सरकार तैयार करने की कवायद में है। और जो द एक्चुअल वॉटरशेड मूवमेंट इन द कंप्लीट स्पोर्टिंग इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री वॉज खेलो इंडिया। 2018 में जो खेलो इंडिया गेम्स शुरू हुए, अब तक 19 एडिशन हो चुके हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और आप इसमें गौरतलब बात यह है कि ये किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं है। अगर ट्राइबल गेम्स है तो वो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, विंटर गेम्स है तो वो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में हो रहे हैं, उड़ीसा में हो रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग जगहों पर। अभी हाल ही में दमन और दीव में बीच गेम्स हुए हैं पहली बार भारत में, तो ऐसे कई नए खेलों को मंच मिला है। आप देखिए सेपक टकरा है, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा भारत में, लेकिन उसके खिलाड़ी निकल रहे हैं हमारे यहाँ से। योगासन, मलखम्ब, कलियारपट्टू, ये ऐसे हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं जिनको एक मंच मिला है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, फिर फिट इंडिया मूवमेंट है, बार बार हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिटनेस पर जोर देते हैं। फिटनेस न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, आम आदमी के लिए भी, रोजमर्रा की दिनचर्या के लिए भी। मैंने कभी किसी को ये बोलते नहीं सुना कि आप खाने में तेल कम कर दीजिए फिटनेस के लिए। मतलब इतनी बारीकियों पर जो ऑब्जर्वेशन है, खिलाड़ियों से मिलना, उनके बारे में जानना, ये सारी चीजें जो है, ये पूरा एक होलिस्टिक सा जो माहौल बना है भारत में। हमारी आकांक्षा है कि हम 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करें, और उस दिशा में हम बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, और उससे पहले 2030 में हम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो भारत को धीरे 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 खेलों की महाशक्ति, क्रिकेट में हम सुपर पावर है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ओलंपिक खेल है उसमें जो हमारा प्रदर्शन ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जा रहा है।
प्रधानमंत्री पर्सनली टीमों से मिलते हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, घर बुलाते हैं और एक एक एथलीट से बात करते हैं।
मैंने जिस उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी, उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ, उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर, मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूँ तो बड़ा गर्व होता है जी। मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं, मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए ये मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है।
देखिए, जब टीम जीतती है तो विजेताओं के लिए तो हर कोई खड़ा होता है, लेकिन जब टीम हारती है और जिस समय खिलाड़ियों का मनोबल गिरा होता है, उस समय अगर देश का प्रधानमंत्री आपसे बात करा, और मुझे वो पल याद आता है जब बर्मिंघम खेलों में संकेत सरगर जो वेटलिफ्टर है उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था, और उसी समय उनको इंजरी हो गई थी एल्बो की और वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे, लेकिन 30 लाख रुपया उनके ब्रिटेन में इलाज का तुरंत खर्चा जो है वो सरकार ने सैंक्शन किया, कोई देर नहीं हुई उसमें, और आज वो फिर से नए मोर्चे फतेह करने के लिए तैयार है।
हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं देवेंद्र झाझरिया जी। झाझरिया जी, मुझे ये बताइए कि आप पिछले 11 सालों में खेलों में, और खासकर खेलों में भी पैरा ओलंपिक में या पैरा जो स्पोर्ट्स है उनमें क्या विकास देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या विकास आया है, लोगों की जो खिलाड़ियों की सोच है, हिम्मत है, उसमें कितना बदलाव आया है?
देखिए, मैं कहूँ 11 साल जो खेल जगत की रही है वो 11 साल बेमिसाल रही है। मुझे आज भी याद है 2004 के अंदर जब एथेंस पैरालंपिक में गया था तो मुझे खुद के पैसे खर्च करके जाना पड़ा था। खिलाड़ी के लिए उस समय कुछ नहीं था, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और मैंने एशियन गेम में जो 2014 इंचोन में हुए थे तो हम खेल करके वापिस आए, प्रधानमंत्री जी ने हमसे मुलाकात की थी, तो मुझे आज भी याद है मैंने उस समय एक बात कही थी प्रधानमंत्री जी को कि सर और तो सब ठीक है लेकिन कम से कम खिलाड़ी ये जीत के आते हैं इनको प्राइज मनी टाइम पे मिलनी चाहिए और ट्रेनिंग समय पे मिलनी चाहिए इनको। तो मुझे आज भी याद है उन्होंने हंस के कहा था कि ये आपकी लास्ट शिकायत होगी, और जब भी खिलाड़ी उसके बाद जीत के आते हैं ओलंपिक कॉमनवेल्थ तो उनके हाथ में चेक होता है और वो अपने घर बाद में जाते हैं। 2012 जो लंदन पैरालंपिक थे उसमें हमने मात्र एक सिल्वर मेडल जीता था।
देवेंद्र जी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 2 एडिशन हो चुके हैं, हाल ही में दिल्ली में दूसरा एडिशन हुआ, आपको क्या लगता है इस तरह के जो जमीनी स्तर पर जो गेम्स हो रहे हैं खेलो इंडिया जैसे, इनका पूरे ओवरऑल गेम्स को स्ट्रॉन्ग करने में कितना बड़ा हाथ है?
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें इतनी सुविधाएं मिलती है खिलाड़ियों को। पैरा खेलो इंडिया गेम्स में जो मेडल जीत के खिलाड़ी जाते हैं तो अलग अलग एनसीओई ट्रेनिंग सेंटर हमारे होते हैं उनमें उनका सिलेक्शन होता है, और जब एनसीओई में खिलाड़ी जाता है, हमारे हिंदुस्तान में 80% गरीब किसान मजदूर के बच्चे गेम करते हैं, जब उनको वो जा करके जब फैसिलिटी मिलती है उनको, उस फैसिलिटी का वो सदुपयोग करता है तब वो रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए ये ग्रास रूट तक फैसिलिटी पहुंची है खेलो इंडिया की वजह से।
शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। और प्रधानमंत्री जब इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होते हैं, वो देखते हैं गेम की कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, और कोई कमी होती है तो डायरेक्शंस भी देते हैं। मोना जी, स्पोर्ट्स जो है एक माइंडसेट का है
जी,
कि अगर आप सही माइंडसेट से कोई देश अप्रोच करता है किसी चीज को तो वो अचीव भी करता है। ये हमने क्रिकेट में देखा है, ये हमने हॉकी में देखा है और बाकी गेमों में भी हम देख रहे हैं। अभी पिछले अगर 10-11 साल की बात करें तो माइंडसेट में कितना चेंज आया है? पेरेंट्स जो हैं, जो अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी डालने के लिए कितने उत्सुक अभी आप देखते हैं, ये कितना बड़ा ट्रेंड चेंज है?
देखिए बिल्कुल, कोई भी माता पिता है उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की भविष्य की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा। वो कैसे सर्वाइव करेगा, ब्रेडविनिंग मेंबर अगर घर का है तो कैसे सिर्फ खेलो। पहले कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस माइंडसेट को पूरी तरह से बदला है पिछले 11 साल में, क्योंकि जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे, जो खेल की प्रतिभा हैं, जैसे कि अभी झाझड़िया जी ने भी कहा कि रूरल एरिया से आते हैं, निचले तबके से आते हैं, इन सबको कईयों को मैंने बात की है तो उनके लिए एक सोलास जिसको कहते हैं कि कहां उनको इन सभी विषमताओं, जिंदगी की जो विषमताएं हैं उनसे निकलने का एक सकारात्मक माध्यम बनता है खेल। तो अब आप देखिए इतनी सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, खेलो इंडिया है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो आते हैं सामने से तो उनको आप आर्थिक सुरक्षा दे रहे हैं, नौकरी की आप गारंटी दे रहे हैं, और अभी एक रीसेट स्कीम आई है कि जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट स्कीम, कि आप रिटायर भी हो चुके हैं उसके बाद भी आपके लिए कहीं ना कहीं कोई रोजगार है। तो ये सारी चीजों ने अभिभावकों की मानसिकता बदली है, और सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा है हमारे देश के नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, ऐसे कई खिलाड़ी जो ओलंपिक में पदक जीत कर आए हैं और जो इंस्टेंट फेम मिला है, उससे काफी मानसिकता में बदलाव आया है।
मोना जी हमें याद है, पूरे देश को याद है कि टोक्यो में जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था फाइनल में, उम्मीद थी कि गोल्ड आएगा मगर सिल्वर जीते थे।
देखो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली अगर ऑल ओवर देखे तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रॉन्ज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है।
मोना जी आखिरी सवाल आपसे है कि हम लोग सिर्फ एथलेटिक स्पोर्ट्स में ही फोकस नहीं करें, हम लोग चेस जैसी गेम्स या अन्य जो गेम है जो कि उतने ज्यादा फोकस में नहीं रहती थी उनमें अच्छा कर रहे हैं। शतरंज में भी डी कुकीस ने जब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली और पूरे देश में जो खुशी का माहौल था, जो लोग चेस या शतरंज नहीं भी फॉलो करते उनको भी बहुत खुशी हुई कि हमारे एक प्लेयर ने एक ऐसी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की है।
Let me say congratulations. The new world champion.
Thank you. I was going to play rook b3 almost, but then I saw that this bishop is actually getting trapped, and after king e1 I have king e5 in the pawn ending, which is just winning. I mean, when I realized that, probably the best moment of my life.
निश्चित तौर पर जिस तरीके से गुकेश ने, इतने कम उम्र के खिलाड़ी हैं, और डिंग लिरेन को जिस तरह से हराया, तो मुझे लगता है सिंगापुर से लेकर साउथ से लेकर नॉर्थ तक, वेस्ट ईस्ट, पूरे भारत में तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है भारतीय शतरंज के लिए।
जी आप चेस की पॉपुलैरिटी को कैसे देखते हैं?
देखिए भारत चेस की नर्सरी रहा है, विश्वनाथन आनंद 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, और जिस तरह से 18 साल की उम्र में गुकेश ने, जो चैलेंजर थे सबसे कम उम्र के, और खिताब जीता, वर्ल्ड चैंपियन बने, और अभी हाल ही में जो नॉर्वे के स्टावेंजर में चैंपियनशिप चल रही है वहां पे देखिए अर्जुन एरिगेसी और डी गुकेश दोनों दौड़ में है खिताब जीतने की, कोनेरू हम्पी महिला वर्ग में दौड़ में है। तो चेस में चेन्नई से बाहर से भी खिलाड़ी आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा भारत के पास पूल है खिलाड़ियों का, चाहे वो प्रज्ञानानंदा हो, अरविंद हो, गुकेश हो, अर्जुन एरिगेसी हो, कोनेरू हम्पी हो, आर वैशाली हो, तो हमारा भविष्य मुझे लगता है चेस में बहुत ही सुरक्षित है।
जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मोना पारसारथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और सभी से यही कहेंगे कि अभिभावक जो भी हमें सुन रहे हैं कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलों में डालें, और बच्चे भी अलग अलग अपनी पसंद की खेलें चुनें, क्योंकि अब सरकार का रवैया बदल चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बदल रहा है, और आप अपने खेलों में सपनों को साकार कर सकते हैं। तो इस बातचीत के अगले हिस्से में हमारे साथी कमल कुमार प्रजापति बात करेंगे केजी सुरेश से, और जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या नई नीतियां आई हैं, और सरकार का कितना जोर है शिक्षा पर।
बीते 11 वर्षों में सरकार ने अमृत पीढ़ी यानी भारत की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और इन कदमों में शिक्षा में सुधार से लेकर शिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी और नवाचार और तमाम नीतिगत सुधारों को देखा जा सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि बीते 11 वर्षों में किस तरह से भारत का शिक्षा क्षेत्र बदला है और किस तरह से नीतिगत सुधारों की बदौलत आने वाले समय में भी इसके हमें शिक्षा के क्षेत्र में बड़े नतीजे देखने को मिलने वाले हैं। तो चर्चा में शामिल है हमारे साथ विश्लेषक के जी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद कमल जी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो एक बड़ा मील का पत्थर समझी जा रही है बीते 11 वर्षों में शिक्षा सुधार का, जिसकी बदौलत समझा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत का जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें बड़ी तब्दीली आने वाली है। तो इस शिक्षा नीति को आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसके परिणाम आने वाले समय में हमें मिलने वाले हैं?
कमल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं समझता हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनाने का अगर कोई रोड मैप बना है, ताकि एक सिर्फ के खोखली बात न रह जाए अपितु इसको जमीन पर उतारा जाए, इसको अमली जामा पहनाया जाए, इसी उद्देश्य के साथ पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। याद रखें कि 1986 में जो आया था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, नई शिक्षा नीति, जबकि पहली बार एक राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और इसके साथ साथ ही दो और बातें हुई। एक, जो हमारे जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका जो है नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय किया गया, यानी कि शिक्षा के प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से सरकार ने संदेश दिया कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। दूसरा, सरकार ने यह भी अपना मंशा जाहिर किया कि हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं आगे चलकर जो आदर्श स्थिति माना जाता है कि शिक्षा के लिए बजट का 6% हम शिक्षा के लिए देंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में जितने भी बदलाव हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि वैश्विक स्तर पर जो भारतीय नागरिक है अपने आप को स्थापित कर पाए, लेकिन साथ ही साथ एक भारतीय की अपनी जड़ें मजबूत हो, वो एक वैश्विक नागरिक बने जिसकी जड़ें भारतीय हो, इस बात को भी ध्यान रखने के लिए शिक्षा नीति में एक तरफ तकनीक, एक तरफ आप देखेंगे कि उस क्षेत्र का जो भी विशेषज्ञता है, विशिष्टता है, उस सबको समाहित किया गया, तो दूसरी तरफ भारतीय ज्ञान परंपरा को भी समाहित किया, ताकि जब हम शिक्षा अर्जित करते हैं जी। तो हमारे अंदर का जो अस्मिता है वो जगे, हमें गर्व हो भारतीय होने पर, हमें अपने इतिहास पर, अपने संस्कृति पर, अपने विरासत पर, अपने सभ्यता पर हमको गर्व हो, साथ साथ हम नई चीजों को सीख कर हम भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाए, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में हम कदम बढ़ाएं।
जी, एक बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार ये हुआ है कि उच्च शिक्षा पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और खास तौर पर जो शिक्षण संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं और स्टैंड अलोन संस्थान पीएम विद्या लक्ष्मी और अनुसंधान केंद्र, इनकी खासी संख्या बढ़ी है। और शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात करें तो 70,000 से भी ज्यादा ये संख्या है। इसी तरह से विश्वविद्यालयों की भी 2014-15 से पहले जो एक सीमित संख्या थी उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। तो जिस तरह से लगातार विस्तार हुआ है शिक्षण संस्थानों की संख्या में, उससे कैसे विद्यार्थियों को और ज्यादा मौका मिला है इन संस्थानों में दाखिला लेने में?
देखिए, हमारे इसमें दो तरीके से फोकस रहा
जी।
एक जो है संख्यात्मक और दूसरा गुणात्मक।
बिल्कुल,
इन दोनों पर जोर दिया गया। एक तो क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है और एस्पिरेशनल है, वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनके लिए विकल्प जितना भी प्रदान कर सके हम करें। तो दूसरी तरफ गुणवत्ता बढ़ाने पर भी शोध, जो एक तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व में अगर महत्व दिया जाता है तो वो शोध को महत्व दिया जाता है, तो शोध को भी महत्व दिया गया। तो गुणात्मक और संख्यात्मक जो है बढ़ोतरी हुई है। लगभग आप समझ सकते हैं कि हर सप्ताह में एक विश्वविद्यालय और दो नए कॉलेजेस के टारगेट 2014 से चल रही है
जी।
और 22 नए विश्वविद्यालय तो मात्र उत्तर पूर्व में खड़े हुए, लद्दाख जैसे दूर दराज के क्षेत्र में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खड़े हुए। हमारे बच्चे MBBS के लिए जो है विदेशों में जाते थे, और साथ साथ देश में हमेशा ये एक मांग रही कि MBBS के लिए जो है सीटें नहीं बढ़ रही है जिसके कारण डॉक्टरों की कमी हो रही है। तो MBBS की सीटें 53% बढ़ी है और PG की मेडिकल सीटें जो है 80% बढ़ी
जी।
6 नई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को जो है संचालित कर दिया गया है। 16 और जो है योजना में है। इसी तरीके से ताकि ये संख्या का भी ध्यान रखा जाए, हमारे बढ़ती आबादी का भी ध्यान रखा जाए, इसलिए स्कूल में जो दाखिला है वो 2014 में 96.7% था, उससे 2022 में हम 98.4% में आ जाते हैं। उसमें जो हमारी बच्चियां हैं उनकी जो संख्या है उसमें 31% का इजाफा हुआ है। अनुसूचित जातियों का जो विद्यार्थी है उनका 44% दाखिला बढ़ा है और अनुसूचित जनजातियों का जो है 65% का जो है दाखिला बढ़ा है। इसी तरीके से जो अकलियत या अल्पसंख्यक है उनके लिए भी क्या 4 करोड़ रुपए, ये अक्सर ये एक बातें बताई जाती है कि अल्पसंख्यकों को हाशिए में रख दिया है, तो अगर आप सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट एनरोलमेंट देखेंगे वो 4 करोड़ से 2015-16 में 2020-21 में 4,55,00,000 और उच्च शिक्षा में संख्या बढ़ी है 22.97 लाख से 29.88 लाख। सर्व शिक्षा योजना को जो है अभियान को बढ़ा दिया गया है। एकलव्य मॉडल जो रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय जो विद्यालय है इसको बढ़ा दिया गया है। हाशिए पे खड़े हुए जो विद्यार्थी है उनके लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स बढ़ा दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई, और बाकी तो मैं गिनवाने लग जाऊं कि IIM कहाँ थे और उनकी कितनी संख्या बढ़ गई है, नए IITs खड़े हो गए हैं, आईसर की संख्या बढ़ गई है और भारतीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम जो शिक्षा का जो लोकतांत्रिकरण हुआ है उस पर भी जोर दिया गया। मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में MBBS का जो टेक्स्ट बुक है पाठ्यक्रम जो है वो अब हिंदी में, ताकि जो गाँव दूर देहात से भी जो विद्यार्थी आता है उसको भी बड़े तकनीकी जो पाठ्यक्रम है उसको सीखने में उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, उसके अपने मातृभाषा में उसको प्रदान किया जाए
जी। और हम उच्च शिक्षा की तो बात कर ही रहे हैं लेकिन स्कूली शिक्षा जो एक विद्यार्थी की नींव होती है उस पर भी विशेष फोकस है। जैसे PM श्री योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है, अत्याधुनिक उन्हें बनाया जा रहा है। तो इस तरह के प्रयास जो बच्चों में शिक्षा की एक गुणवत्तापूर्ण नींव डालेंगे वो कैसे महत्वपूर्ण है?
देखिए उसी नींव पर तो आप मजबूत इमारत खड़ा करेंगे। आपने अगर सिर्फ उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया और आपने बुनियादी शिक्षा पर नहीं ध्यान दिया, जो हमारे विद्यालयीन शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर इमारत कैसे मजबूत होगी? इसलिए उस स्तर पर भी आप ये सोचिए कि जो विशेष ध्यान जो है आज हम दे रहे हैं सिर्फ IIM और IIT तक सीमित नहीं है, हम स्कूली शिक्षा में PM श्री योजना के तहत जो है 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके शिक्षा समग्र विकास और 21वीं सदी के कौशलों पर जोर दिया जा रहा है
जी।
और इस योजना में कुल 27,360 करोड़ रुपए का अनुदान है जिसमें से केंद्र का मात्र योगदान 18,128 करोड़ है। और यही नहीं, डिजिटल शिक्षा PM दिशा के माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो विद्यार्थी शहरों में उसमें आ नहीं पाते हैं अपना शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, उनके घर तक पहुंचाया जाए शिक्षा को। इसलिए डिस्टेंस लर्निंग पर जोर है, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर है।
ये आपने बहुत अच्छा यहाँ डिजिटल शिक्षा का जिक्र किया और यहाँ पर एक परिकल्पना भी है डिजिटल यूनिवर्सिटी की, क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल दौर है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक होने वाला है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स कैसे भारत में शिक्षा में एक बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं, कैसे खासतौर पर जो भारत क्योंकि इतना विशाल है, इतनी विविधता है, तो दूर दराज के विद्यार्थियों को जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुँच नहीं है डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसे कॉन्सेप्ट से उनको और ज्यादा सहूलियत होगी?
बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्योंकि अब जो है आपको फिजिकली आपको प्रत्यक्ष में क्लास को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपका बस का भाड़ा भी लगता है, जिसमें आपका जो है रेल का भाड़ा भी लगता है, आपको दूसरे शहर में जो है गांव छोड़कर जाके आपको रहना पड़ता है तो उसमें खर्चा बढ़ता है। लेकिन अगर आपके गाँव में अगर ऑनलाइन की व्यवस्था है और जिसका पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गाँव गाँव तक नेटवर्क पहुंचे, तो अगर आप अपने घर बैठे जो है आप शिक्षा जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि सचमुच ये क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और यही नहीं, अब विद्यार्थियों को ये भी अनुमति दिया गया है कि वे एक साथ एक ऑफलाइन में भी कर सकते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से कई कोर्सेज साथ में कर सकते हैं, आप पर कोई रोक नहीं है। और यही नहीं, इवन जो रेगुलर कोर्सेज हैं उसमें भी ऑनलाइन कंटेंट यानी MOOCs यानी कि अंतर विषयी या इंटरडिसिप्लिनरी के तहत जो है या मल्टीडिसिप्लिनरी बहुविषयी के तहत आपको अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है उसके भी आपको क्रेडिट मिलेंगे, ताकि आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से उसके क्रेडिट को अपने एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जोड़ सकते हैं
जी।
तो ये सुविधा भी दी गई है, यानी कि इसका सुविधा ये भी है कि आप दिन रात कभी भी आप अपने पढ़ाई को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, समय का कोई पाबंदी नहीं है, आप जब फुर्सत में हो आप पढ़ाई कर सकते हैं। इससे जो है जो कामकाजी लोग हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, कम उम्र के जो है वो आपके मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, ये भी जो है पढ़ाई कर सकते हैं।
बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा फोकस है शिक्षा को व्यवहारिक बनाना और विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे कि वो कौशल हासिल कर सकें, तकनीकी रूप से सशक्त हो सकें। तो इस पहलू पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से शिक्षा का व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है, जिस पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी ध्यान दिया है, और इससे कैसे आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी जिसे हम अमृत पीढ़ी कह रहे हैं उनका विकसित भारत में योगदान होने वाला है।
बिल्कुल निश्चित ही, देखिए रोजगार तो बहुत महत्वपूर्ण है और यह किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि सब कुछ सरकारी माध्यम से ही सबको नौकरी मिले, तो फिर कौशल विकास करना बहुत आवश्यक है। देश में ऐसे कई चीजें हैं जिसमें अच्छे कारीगर मिलना आज असंभव हो गया है, तो क्या प्रशिक्षित सुशिक्षित कारीगर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं? जो अच्छी तरह शिक्षा अगर पाए तो वो जो है एक गरिमापूर्ण अपना जो है उसके एवज में आप तनख्वाह भी ले सकते हैं, मानदेय भी ले सकते हैं, उसका आप अपना जो है एक सुनिश्चित आप रकम भी तय कर सकते हैं। क्या ये हो नहीं सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है। इसी की तरह सिर्फ रोजगार पर नहीं है जोर, जोर इस बात पर भी है कि आपको किस तरीके से आपको स्टार्टअप अपना शुरू करने का, स्वरोजगार पर भी जोर दिया गया है
जी, बिल्कुल।
इसलिए आपके स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टैंडअप इंडिया है, और यहाँ तो आप देखेंगे कि जो आपके खोमचे चला कराते हैं, आपके जो है रेडी चलाते हैं, उनके लिए भी जो है आपको मुद्रा योजना जैसे योजनाएं हैं जिससे आप बेहतर सेवाएं दे सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और उसके लिए बैंक से आपको ऋण मिलेगा। तो हर तरह से आपको प्रोत्साहित करने का, युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने का जो एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है, ताकि शिक्षा आपको एक अच्छा नागरिक बनाए, एक सभ्य मनुष्य बनाए, अपने सुसंस्कृति अपने भाषा से पहचान दिलाए, लेकिन साथ ही आपका जीवन यापन का भी, एक अच्छा जीवन जीने का भी एक मार्ग जो है वो प्रशस्त करे।
बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में आपने कहा ही कि ये एक संख्या नहीं है कि इमारतों की संख्या बढ़ रही है, सीटों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि ये उस विश्वास का प्रमाण है कि हमारी जो अमृत पीढ़ी या युवा पीढ़ी है वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके एक कौशल पीढ़ी बनके विश्व भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए और एक श्रेष्ठतम पीढ़ी बनकर पूरी दुनिया में उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और 11 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विभिन्न पहल पर आपने विस्तार से चर्चा की। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 11 वर्षों के दौरान खेल और शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पैरालंपिक में 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी और शिक्षाविद KG सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार प्रवीण डोगरा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।